फरमाया कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिल हक, जिस तरह निकाल लाया आपको आपका रब आपके घर से हक के साथ। एक जुमले में शायद कितनी ही बातें हैं। लफ्ज़ कमा को देख लीजिए, कमा का लफ्ज़ तशबीह के लिए आता है ना, जैसा के, और ये कब होता है जब इससे पीछे भी कोई बात हो, राइट? तो ऐसे लगता है कि जुमला अधूरा है, इससे पहले कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि तशबीह होती है और तशबीह के लिए कोई चीज़ होती है। तो कैसे? अब इसका जवाब कुरान की आयत से नहीं मिल रहा। मुफस्सरीन ने तकरीबन 15 के करीब डिफरेंट कॉल नकल किए हैं इसके बारे में, यानी 15 डिफरेंट राय हैं, जिसमें दो तीन जो ज़्यादा करीब लगती हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। कमा से मुराद ये कि जैसा के, वो क्या था जैसा के? कहते हैं कि माल गनीमत जब बदर का तकसीम होने लगा तो सहाबा कराम में कुछ इख्तलाफ राय हो गया, कुछ ने कहा ये हमें मिलेगा, कुछ ने कहा कुछ कुछ ना कुछ। तो ऐसे मौके पे अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि देखो अपने साथियों को बता दो कि गज़वा बदर के लिए निकलना कुछ लोगों को मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके कितने अच्छे नतायज निकले कि मुसलमानों को इतना कुछ मिल गया। तो कमा अखरजक रब्बुका, जिस रब ने आपको आपके घर से निकाल कर एक अच्छे नतीजे से दोचार किया, तो अगर इस वक्त माले गनीमत की बांट का फैसला भी नबी के पास छोड़ दो, वो जिसको जो देता है ले लो, ठीक है? यानी जिस तरह जंग का फैसला हुआ तो उसमें नुकसान नहीं हुआ था, इस तरह अब माले गनीमत की बांट पे भी सहाबा कराम को चाहिए कि अल्लाह के नबी के फैसले पर राजी हो जाएं। इताअत का हमेशा फ़ायदा होता है, बाअदब बानसीब होता है। जो एक बात देखता है और किसी की मानता है और उससे फ़ायदा होता है, तो उसको दूसरी भी माननी चाहिए। ये एक बहुत खूबसूरत तरबियत का असूल है। इसमें कभी किसी की एक बात मानकर आपको फ़ायदा हो, तो कभी दोबारा भी मौका मिले तो मान लेनी चाहिए। बस दफ़ा होता है कि इब्तदा में इंसान मान लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे माँ बाप की हर बात खुशी खुशी मानते हैं क्योंकि अपनी अकलें काम नहीं करती, लेकिन जूँ ही बच्चे बड़े होते हैं तो वो क्यों क्या चूँ चरा करने लग जाते हैं। तो ये नहीं करना। 10 साल के भी बच्चे हो जाएंगे या 15 के भी हो जाएंगे, फिर भी जैसे माँ बाप की बात मानी तो फ़ायदा हुआ, इसी तरह नबी की बात सहाबा ने मानी तो उनको फ़ायदा हुआ। और ये चीज़ वक्त ने दिखाई कि जब सहाबा कराम में इस दर्जे की इताअत थी, सबमिशन थी, तो उसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। एक दूसरी राय क्या है कि पिछली आयतों में सच्चे मोमिनों के लिए आखरत में बुलंद दर्जों का तज़किरा था, बख्शिश का था। पिछली आयत को देख लें, आयत 4 को ही, के दरजात निंद रब्बी हैं व मगफिरत व रिज़्क़ुन करीम। तो कहते हैं कि जिस तरह पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने ये वादे किए थे, तो उसी वादे की सच्चाई के साथ कह दिया कि देखो जैसे तुम्हें बदर के मैदान में निकाला था तो मदद हुई थी, इसी तरह अल्लाह के वो वादे भी पूरे हो जाएंगे। इसी तरह एक तीसरी राय भी है जिसके अंदर, यानी आप देख सकते हैं, और वो क्या है कि बास कहते हैं कि इससे पहले लफ्ज़ नसरका तेरी मदद की, कमा नसरका रब्बुका, ये मुराद है कि जिस तरह आपके रब ने पहले मदद की इस तरह वो दोबारा भी करेगा। और इस पर बहुत लंबी बात है जो मैं इस वक्त ज़रूरत नहीं समझती आपके सामने शेयर करने की, कि किसी एक मुफस्सिर थे, और जब दीन में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र होता है तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इल्हाम के ज़रिए, बाज़ दफ़ा ख्वाब के ज़रिए भी बताते हैं। तो एक आलिम थे, नाम मैं इसलिए नहीं बोलती कि आप पे बोझल ना पड़े, लेकिन असलाफ में से एक ऐसे मुफस्सिर थे कि वो कहते हैं कि जब मैं इस आयत पर आया तो अटक गया। मैंने कहा इधर कुछ मिसिंग है, कमा अखराजा कैसे? ये सीधे से आप आए और बैठे बैठे आपको कोई आके बैठ सके, जैसे ये हो गया तो आप कहेंगे कैसे हो गया, तो जैसे से पहले कैसे होती है। तो कहते मैं इस पे बहुत उलझन में था, क्या करूँ कुछ हूँ। तो जब मैं रात को सोया तो ख्वाब में मुझे अल्लाह ताला ने ये बताया कि नसरा का, दो लोग बैठे हुए और इस आयत की बात कर रहे हैं, इससे क्या होना चाहिए। तो उसके नतीजे में वो कहते हैं कि नसरा का हुआ। अब किसी का हुज्जत तो नहीं ख्वाब, लेकिन सिर्फ ये ऐसे ही है कि जैसे जो चीज़ दिल को लगती है वो फिर आपके ख्वाबों का हिस्सा बन जाती है। तो बहरहाल सारी बातों को जमा कर लें तो इसका खुलासा क्या बनता है, कमा अखरजक रब्बुका, जैसे निकाला आपको आपके रब ने, जिस तरह माले गनीमत के मामले में अब मामला आ गया तो तुम उसको अल्लाह के नबी के हुक्मों पे चलाते जाओ। क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा फ़र्क, पहले अरब का जो रिवाज था, जो रस्में थी, उससे मुख्तलिफ तरीके पे बांट हो रही थी। तो कहा कि बस जैसे पहले बातें मानते रहे हो, आप चुपके से ऐसे ही मानते जाओ। फिर दूसरा लफ्ज़ देखिए, अखरजा का, आपको निकाला, इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं निकलते थे। और हकीकत यह है कि आज भी कोई बंदा जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है वो अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं निकलता। निकलता इंसान अपने इरादे से, अपनी कोशिश से, लेकिन अल्लाह उसको अपनी तरफ लेता है कि ये मैं आपको निकालता हूँ। जैसे इस वक्त आज आप घर से निकल के आए हुए हैं कुरान सीखने और सिखाने और इसमें मदद करने के लिए, तो ये सब अल्लाह का हुक्म है कि दर हकीकत में ये अल्लाह का निकालना था। फिर लफ्ज़ रब्बू का पे थोड़ा सा गौर कर लीजिए। रब का लफ्ज़ किसके लिए आता है? रब्बा यो रब्बु तरबियत, शफकत का मानी है ना, पालने वाला, सिफत रबूबियत। तो क्या बताया कि इस जिहाद के लिए आपका निकलना या आपको जिहाद के लिए निकलने का हुक्म देना अल्लाह की शान रबूबियत से और तरबियत के तकाजे से था, क्योंकि इसके ज़रिए से मज़लूम और पिसे हुए मुसलमानों की मदद होगी। आज जिहाद को कहते हैं ना टेररिज्म और किताल और सख्ती, हालांकि जिहाद के लिए किसी को अगर निकलने का हुक्म दिया गया तो वो भी अल्लाह की रबूबियत थी। जिहाद ना होता तो लोग जुल्म कर कर के मर मट मिट चुके होते। फिर अगला लफ्ज़ देखिए, मिम बैती का, आपके घर से। ये पीछे भी गुजर चुका मिन अहलिका के लफ्ज़ों में सूरत आले इमरान में, यहाँ बैती का। बास ने कहा कि यहाँ बैत से मुराद मदीना है, क्योंकि आप उस वक़्त मदीना में थे और मदीना आपका घर बन चुका था हिजरत के बाद, और आज तक आपका जस्ते पाक जो है वो वहीं मौजूद है, ठीक है। और आपके घर को अगर इससे ले लें कि मदीना में आपका हुजरा, तो कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लम अपनी प्यारी बीवी आयशा के पास थे। और ये एक अजीब बात आपको सुन्नत में दिखेगी कि जितने अल्लाह के नबी के साथ कठिन मामले हुए ना, वो आयशा के घर से उठते हुए हुए, क्योंकि आयशा से मोहब्बत बड़ी थी। और जहाँ बंदा मोमिन ज़रा सा इंजॉय करने लगता है ना अपने घर वालों को, तो साथ ही दीन का कोई तकाजा आ जाता है, फिर जाना पड़ता है, फिर घर वालों को छोड़ना पड़ता है, फिर रोते बच्चे भी छोड़ने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा सोते शोहरों को भी छोड़ के आना पड़ता है, चुपके चुपके भी आना पड़ता है कि आँख ना खुल जाए उनकी, और बाद में पता चले कि बेगम घर से चली गई हैं कुरान सीखने सिखाने के लिए। लेकिन ये होगा इस रास्ते में, तो ये होगा, जो नहीं कर सकता वो फिर ज़्यादा अच्छी खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकता है बेगम होके, बेखौफ होके। लेकिन ये यकीन नहीं है कि फिर कब्र और हशर और अगले मामले कहाँ होंगे। फिर अगला लफ्ज़ देख लीजिए, बिलहक, हक के साथ निकाला। कितनी बड़ी दलील दी, हक के लिए जा रही हूँ, सच के लिए अल्लाह ने निकाला, क्योंकि ये जाना जो था असल में हक को हक करने के लिए था। आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी का ये निकलना एहकाक हक के लिए था, हक को हक करने के लिए, और इब्तालुल बातिल, बातिल को बातिल करने के लिए था। अगर आज कभी आप घरों से कुरान सीखने सिखाने के लिए निकलें तो कोई माइंड करे तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। ना जाऊं, ना करें कुछ, ना सिखाएं लोगों को कुरान, ना बंद बांधे बुराइयों के आगे, ना डूबती हुई नस्लों को बचाएं, ना बूढ़े लोग जो ना फरमानियाँ कर करके अब दुनिया से जाने के करीब हैं, ना उनके लिए तौबा का कोई बंदोबस्त करें, बताएं कि गलत काम करने जा रही हूँ, ना मैं जाऊँ, आपका क्या दिल कहता है? यकीन करें, सिर्फ लफ्ज़ हक सुन के कोई बंदा जिसके दिल में अलहक की थोड़ी सी भी मोहब्बत है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा इंशाल्लाह, वो कभी भी उस बारे में एक किसी के ऊपर गलत काम नहीं करेगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको निकाला, और आगे हक के ऊपर बात बहुत सारी आएगी अगली आयत में। फरमाया व इन फरीकम मिनल मोमिनीन लकारिहून, बेशक मोमिनों का एक गिरोह तो अलबत्ता नापसंद कर रहा था। अब ये कौन सा फिरका था, ये कौन सा गिरोह था जो नहीं जाना चाहता था, या उनका क्या इरादा था, इसको हम अगली आयतों के साथ साथ देखते जाएंगे। और आप देखें कि अमूमन मोमिनों में से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो पसंद नहीं कर रहे होते जाना, क्योंकि घर में बैठ के तस्बीह पढ़ना बहुत आसान लगता है, सर्दियों में घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के मोटे कपड़े पहन कर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये हर दौर में बुरा लगता है लोगों को, वो नहीं चाहते कि हम जाएं और हम अपने आराम में हलल डालें, हम घर में बैठ के सुन लेंगे, हम पैलटॉक पे सुन लेंगे, इसलिए लोगों को अमूमन नापसंद लगता है घर से निकलना। लेकिन वो निकले, और नापसंद करने वाले जो थे, जिनके दिल में अगर कोई थोड़ा बहुत शैतान ने शुबा डाल भी दिया था, तो फरमाया युजा दिलू न कफिल हक की, आपसे हक के मामले में झगड़ा करते थे। अब ये क्या हक था? पीछे जब मैंने गज़वे बदर का तस्करा शुरू किया तो आपको बताया कि अबू सुफियान एक भारी लश्कर लेके आ रहा था। मुसलमानों का इब्तदा में यही ख्याल था कि इसी लश्कर के साथ हम मिलेंगे, इन्हीं से बात होगी, और ना उनके पास हथियार है, ना तीर है, ना तलवारें हैं, थोड़ी सी कुश्ती करनी पड़ी कर लेंगे, और सारे जो कंटेनर्स हैं उठा के ले आएंगे सोने चांदी के लदे हुए। लेकिन मामला तो बदल गया। अब जब बात थोड़ी बदल गई, हुई क्या बात कि वो तो लश्कर एक साइड पे निकल गया और सामने आ गया अबू जहल का लश्कर जो उसी काफले की मदद के लिए आया। अबू सुफियान ने जब देखा कि मदीना के पास से गुजरा है, तो वो कहते हैं ना दिल का चोर या चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो पता ही था कि 13 साल से मुसलमानों के साथ किया गया हमने और आज उन्हीं के जोन में से गुजर रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई झड़प हो जाए। उसने फौरन चंद लोगों को भेजा मक्का में, कहा कि मेरी मदद के लिए आए, मुझे डर लग रहा है कि जब मैं मदीना से गुजरूंगा तो मुसलमानों से झड़प ना हो जाए। बस ये बात सुनने की देर थी कि अबू जाहल तो कहते ना कि उछलता कूदता अपने साथ 1000 लोगों को लेकर जदीद असलहा, हथियार, तीर, तलवारें लेकर निकल पड़ा, खूबसूरत कपड़े, घोड़ों पे सवारियों पे बैठ के, साथ लौंडियों को रख लिया, गाने बजाने वालियों को रख लिया और सामान रख लिया, शराब रख ली। लोगों ने कहा अल्लाह के बंदे तुम जंग के लिए जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहेगा तुम्हें नहीं पता हम जाएंगे, मुसलमानों से मुकाबला होगा, फिर हम जीतेंगे, फिर फतह का जश्न मनाएंगे, जश्ने फुला मनाएंगे, और फिर ये लौंडियाँ हमारे लिए गाने गाएंगी और हम शराब और कबाब के नशे में चूर होंगे, हम इसलिए सब लेके जा रहे हैं। और उछलते कूदते आ गए। अब मुसलमानों के सामने दो काफले हैं। अगली आयतों को समझने के लिए ये बात अभी समझ लें। अब दो चॉइसेस हैं कि या तो अबू सुफियान के लश्कर से सामना होगा, बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा माल है, क्या ख्याल है किससे लड़े। दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी यह है कि अबू जाहल का लश्कर जो मक्का से आ गया उसमें बहुत सारा असलह माल सामान तो है ही नहीं कि जमाले गनीमत के तौर पे मिलने की उम्मीद हो, उससे लड़े। अब बताएं जरा फितरतन मुसलमानों का क्या दिल चाह रहा होगा? आप होती तो क्या करती, हम होते तो क्या करते? हम कहते बगैर वो भी हाथ हिलाए वो अबू सुफियान खुद ही घर में छोड़ दे चाबियां अपने कंटेनर्स की कि हम तुम्हें गहवार आने की भी जहमत नहीं देते, बस वो बाजार में गए हुए थे, पीछे से बच्चे के पास चाबी ड्रॉप कर जो कि बेगम आएंगी तो उनको ये दे दे। इंसान की फितरत के नाते सहाबा में से अक्सर का दिल ये चाहता था कि हमारा मुकाबला अबू सुफियान के लश्कर से हो, हम नहीं लड़ सकते अबू जहल के लश्करों से। लेकिन हुआ क्या आगे देखते हैं इंशाल्लाह। योजा दिलू न कफिल हक की, वो आपसे हक के मामले में झगड़ रहे हैं। ये कौन झगड़ रहे थे? मक्का वालों का भी झगड़ना हो सकता है जो इसी हक के मुकाबले पे तो आ गए थे, और वो लोग भी हो सकते हैं जो अबू जहल के लश्कर के साथ नहीं लड़ना चाह रहे थे। बात अमा तबैयना, इसके बाद के वाजे हो गया, सब पता चल गया, हक खुल गया, बातिल खुल सामने आ गया, सब कुछ आ गया, इनको पता चल गया इस्लाम हमारी जिंदगी है, इनको पता है कि अल्लाह के नबी एक काबिले भरोसा लीडर है, इनकी लीडरशिप में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। इसके बावजूद हालत क्या थी? कान्नमा युसाकून इलल मौत, गोया कि वो हांके जा रहे हों मौत की तरफ। युसाक उनका लफ्ज़ सीन वाक़ाफ से है, सौक हांकने को कहते हैं, अरबी जबान में साइक ड्राइवर को कहते हैं, हांके जा रहे थे वो मौत की तरह। इस मंजर को आप यूं समझ लें कि गज़वा बदर पहली जंग थी, कोई तजुर्बा नहीं था, कुछ पता ही नहीं था होगा क्या, तो जिस तरह पहले दिन बच्चे को रोते धोते लेके जाती हैं ना माएँ घर से, ये है कैफियत युसाक होना। कुछ लोग जिनके दिल में ईमान था लेकिन बुजदिली, कमज़ोर दिली, थोड़ दिली हो सकती है, उनको लगा बस जी खुदा हाफिज आज तो मौत से मिल के आएंगे, हमने कहाँ बचना है, इलल मौत, ये कैफियत थी। वहुम यंजुरून के वो मौत को देख रहे हैं, यानी ऐसे लग रहा था कि वापस थोड़ी आएंगे। और आप देखें कि अकल से पूछें तो वाकई ऐसे ही होना चाहिए था कि मुसलमानों के पास तो शायद दो तलवारें थी, टूटी हुई तलवारें वो भी, हाँ घोड़े और क्या कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे मुसलमानों को फतह दी वो अगली आयतों में भी। वाइज जाइदुकुमुल्लाहु इहदत्ताइफतैनी, और जब वादा फरमा रहा था अल्लाह तुमसे दो में से एक गिरोहों का, कौन थे दो गिरोह? अबू सुफियान का मालो दौलत से लदा पदा, और दूसरा गिरोह अबू जहल का, जिसके ऊपर जो बहुत तैयारी से थे। अल्लाह ने वादा दे दिया था नबी सल्लम के जरिए से कि इनमें से एक गिरोह तुम्हें हो मिलेगा, अन्नहा लकुम, वो तुम्हारा हो जाएगा। मुराद क्या है कि बस लड़ने की कोशिश करो, शुरू करो, जिससे भी लड़ोगे ना फतह मिल जाएगी। बोलो किससे कर, जैसे चॉइस दी जाती है ना, ये लेंगी कि ये लेंगे, पिक एंड चूज कर लें, चूज कर लीजिए, आप जिस कपड़े पे हाथ रखेंगी वो आपको मिल जाएगा, इतना वादा कर दिया गया। नो प्रॉब्लम, अगर वहां हथियार बहुत है तुम उस पे हाथ रखो तुम्हें वो मिलेगा, और अगर तुम अबू सुफियान वाले पे हाथ रखोगे वो मिलेगा, बताओ क्या करते हो। ये टेस्ट होता है जिंदगी में, बास दफा कुछ मौके पे टेस्ट करने के लिए भी कुछ लोगों से पूछा जा सकता है क्या करना चाहिए आज के हालात में, क्या क्या ये काम करना चाहिए कि नहीं। असल में उस मौके पे देखा ये जा रहा होता है कि इसके अंदर अब इतनी कन्विक्शन कितनी आई है, ये दीन के लिए कितनी और कुर्बानी दे सकता है, कितना और इसके दिल में दर्द है। अल्लाह ने अपने नबी के सहाबियों को इस तरह आजमा लिया कि क्या ख्याल है इन दो में से किससे लड़ा जाए। अब सहाबा की हालत सुनिए, वतवद्दूना, और तुम पसंद करते थे वुद से, वुद ख्वाहिश को, मोहब्बत को कहते हैं, क्या अन्न गैरा ज़ाति शौकति तकूनु लकुम, ये के बगैर हथियारों वाला तुम्हारा हो। शौका का लफ्ज़ समझ लें तो बात वाजे हो जाएगी। शौका कहते हैं कांटे को, शीन वाव काफ इसका रूट है। एक होता है शौक काफ, एक तो हमारे काफ और काफ का भी फर्क नहीं है ना, शौक शौक है जिस शौक से आप आते हैं माशाल्लाह कुरान सीखने, और एक है शौक। अब आपका शौक कहीं शौक में तो नहीं बदल चुका इस कोर्स का है, जो कल तक शौक था अब 10 पारों तक वो कांटा तो नहीं बन चुका दिल का, मारे बांधे कहीं युसाक हो नहीं लल मौत वाली कैफियत तो नहीं है कि कुरान के लिए आने की, और इंशाल्लाह नहीं होगी, अल्लाह ना करे कि कभी भी ऐसी हो। तो कांटे को कहते हैं, और उसी से फिर आगे हथियार का मानिए, क्योंकि पहले दौर में हथियार भी तो यही कांटे शांटे होते थे, तेज धार हथियारों से वाली चीज़ों को कहते हैं। अरबी में जो शख्स हथियारों से लैस हो जिसको मुसल्लख बोलते हैं तो उसको कहते हैं रजुलुन शाइकुस सलाह, और कल्ब के बाद रजुलु शाकिस सलाहत है। तो बहरहाल यहां मुराद है अबू सुफियान का लश्कर जिस पे कोई हथियार नहीं। अल्लाह कहते हैं तुम तो चाहते थे कि तुम्हारा सामना अबू सुफियान के लश्कर से हो जाए जिसके ऊपर कोई हथियार नहीं, जिस पे कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह के इरादे तो कुछ और थे। وَيُرِيدُ اللَّهُ और अल्लाह का इरादा ये था कि हक को हक कर दे अपने कलमात के जरिए, अपनी बात के जरिए। तुम चाहते थे अबू सुफियान के लश्कर से सामना हो जिसपे कोई हथियार नहीं है और मजे से चीजें मिल जाएं, अल्लाह ताला ये नहीं चाहते थे। चीजें तो अल्लाह ने देनी थी तुम्हें, तुम्हें पता ही नहीं था, लेकिन अल्लाह का एक और भी इरादा था, चीजें देने के साथ साथ एक और इरादा भी था, और वो क्या था कि युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही, हक को हक कर दे अपनी जात, अपने कलाम के साथ, अपने कलमात के साथ। ये थी बात, एक वादा, और दूसरा अल्लाह ताला एक इरादा, और दूसरा वयक्ता दाबिर अल काफिरीन, और काट दे वो काफिरों की जड़ दाबिर दुबर से। हाँ, और दाबिर कहते हैं किसी चीज का पीछे वाला हिस्सा, पीछे पड़ चुकी है हम सूरत अल अराफ में, कौम का आखिरी शख्स जो अजाब में मरता है, इसीलिए फिर जड़ को भी कहते हैं। ये बात, और अल्लाह का इरादा क्या था तीसरा, लियुहक्कल हक्का, ताकि साबित कर दे हक को, तकरार है ना युहक्कल हक्का की, और वयुबतिल बातिला, और बाद मिटा दे वो बातिल को, वलौ करिहल मुजरिमून, और अगरचे मुजरिमों को ये बात बड़ी बुरी लगे। यहां से बहुत बुनियादी असूल समझ आता है, मुसलमान चाहते थे सामान मिल जाए और वो एक मिल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला साथ तीन फायदे और भी देना चाहते थे मुसलमानों को, हक हक हो जाए, आज खुल के सामने पता चल जाए कि इस्लाम सच्चा मजहब है, यही दीन लोगों की निजात का जरिया बनेगा, इसी को फैलाना है, इसी को काम करना है, और साथ ही साथ युबतिल अल बातिल, कुफर का सर कुचला जाए, अबू जहल मारा जाए, उतबा मारा जाए, शैबा मारा जाए, रबिया मारा जाए, ये बड़े बड़े सरगन्ना थे, जैसे आज के कुछ बड़े चौधरी टाइप के जहन जो होते हैं ना, जो सारी इंसानियत के फैसले करते हैं, ये बड़े बड़े लीडर्स थे, ये अपने वक्त की बड़ी ताकतें थी। अब अगर सोचिए जरा कि अबू सुफियान के लश्कर से मुसलमानों का सामना होता, खुशी खुशी मुसलमान सारा सामान लेके आ जाते, कहते वेरी गुड वेल डन, आसानी से मामला हो गया, लेकिन हर अगले साल फिर अबू जहल कुछ और करके आ जाता। बज़ाहर हमें क्या अच्छा लग रहा होता है, आसानियाँ, लेकिन असल खैर होती है मुश्किलात में। हमें दीन के रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं ना, उसमें भी यही असूल है। अल्लाह अगर अबू सुफियान के बड़े लश्कर जो 50 करोड़ से भी ज़ायद मालियत का सामान था, अगर वो मुसलमानों को पहले ही हुलारे में दे सकता है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। हम कहते हैं अभी हम नए नए काम कर रहे हैं। अमूमन जहाँ कोई गलती दिखती है ना, तो काम वालों का से एक बड़ा खूबसूरत जुमला होता है, अभी नया काम कर रहे हैं, अभी हमें सिखाना है आपने, अभी करना है। तो जब नए ही ठीक नहीं करा तो अगला कैसे ठीक होगा? हाँ, आप देखिए कि पहली जंग में अल्लाह ताला मुसलमानों को 100+ नंबर दे रहा है, जो सोचा भी नहीं था वो मिल गया, राइट? लेकिन अल्लाह ताला शुरू में वो सारी खैर दे देना जो बाद में उसने देनी है इंशाल्लाह, तो लोगों की तरबियत नहीं होती। मैं कहती हूँ जो छोटी जगह को साफ नहीं रख सकता, वो बड़ी को कभी साफ नहीं रखेगा। आप सब क्यों हंस रहे हैं? हैं? क्योंकि छोटी जगह पे गंद और डिसऑर्गेनाइजेशन दिखती है, सामने जो होती है हर चीज, आपका तिल मारिया ही नहीं, करें क्या, ये नहीं वो नहीं। हाँ, तो बड़ी में तो एक फायदा होगा, छुपा देंगे, दिखेगा ही नहीं। यानी बड़ी जगह में वो ही सफाई रख सकता है जो छोटी में रखता है, बड़ा घर उसी का ऑर्गेनाइज होगा जिसका छोटा घर ऑर्गेनाइज होता है। मैं जब ये बात करती हूँ, कल भी हम जब यहाँ क्लीनिंग कुछ कर रहे थे तो मैंने ये बात सोची भी थी और शायद कही भी हो, मेरे जहन में किसी का घर आता है बहुत बचपन, जिसको आप कह सकते हैं कि 8-10 साल की उम्र होगी। हमारे रिलेटिव्स में एक खातून, 2 कमरों का उनका घर था, फ्लैट जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, छोटा सा घर। इतनी सलीकाशार थी कि उन्होंने अलमारियां नहीं थी लेकिन कपड़े की सी सी के ना ऑर्गेनाइजिंग चीजें बनाई हुई थी, किचन में भी उनकी चीजें, यानी मेरे जहन में उनका घर आ जाता है, डब्बी का डब्बी घर आप कह सकते हैं, कि टांगे भी सीधी कर ले तो 2 से 3 लोग शायद एक कमरे में लेट भी नहीं सकते, इतना छोटा घर, लेकिन यूं इंचों के साथ उनका होता था। तो मैंने अपने लिए भी हमेशा यही सोचा, इमेजिन किया, तो वो तस्वर में आता है आज शायद वो कितने बड़े घर में होंगी। लेकिन बाज दफा लोगों के इतने बड़े बड़े घर देखे हैं कि दिल नहीं करता 10 मिनट भी खड़े हों, इतने उलझे हुए। अल्लाह ताला ने सहाबाए कराम को बदर के मौके पे थोड़ी सी कोशिश और थोड़े से मुश्किल हालात और अबू जाहल के लश्कर से क्यों जुड़ मिलवाया, ताकि इनको काम करना आ जाए, इनको सोबते बर्दाश्त करनी आ जाए, और वो हुआ। अल्लाह ताला ये मुश्किलात क्यों देता है? ताकि बाद में मिलने वाली नेमतों और आसानियों की कदर हो। आप लोगों ने ये बात कई दफा सुनी होगी, कहते हैं कि जिन्होंने एक एक पैसा कमाया होता है उनको पैसे की कदर होती है। हा? और जिन बच्चों को माँ बाप से मिल जाता है, जो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होते हैं, उनको कमाने में मुश्किल नहीं लगता, इजी कम इजी गो, बिल्कुल यही कैफियत है। जो लोग दीन के काम में शुरू में कुर्बानियां देते हैं ना, मुश्किलात में सहते हैं, करते भी और कराते भी। देखिए हमेशा काम करना मुश्किल नहीं होता, कराना भी मुश्किल होता है, पढ़ाना मुश्किल है तो पढ़ना भी मुश्किल है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आज पहली रिवायत कायम कर रहे हैं अपने इस शहर में कि ख्वातीन रोज निकल के आ जाती हैं और पढ़ती हैं। जो आपकी कुर्बानी है बाद वालों की इंशाल्लाह इससे ज्यादा होगी, उनको मुश्किल कम होगी, इज इट राइट? कल मुझे किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, आप सभी के हालात की बात है, नाते से बात है, कि इस वक्त आपको पता है कि वीकेंड का कोर्स चला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, लोग शौक से आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि देखें जब वो क्यों ना शौक से आए, उन्होंने इससे पहले 2 कामयाब कोर्स देख चुके हैं, वो हमारे माशाल्लाह इस नूरुल कुरान के। एक तो उन्होंने रमजान का दौरे कुरान अटेंड कर लिया, कुछ लोगों ने, कुछ ने समर किया, और दूसरी बात यह कि वो ये आपका सबीलुल जन्ना कोर्स देख रहे हैं। तो वो क्यों ना इस कोर्स में खुशी से आए, हमारा अजर ज्यादा है कि जब हमने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया था तो हमारे पास कोई यकीन नहीं था कि हम कुछ करेंगे भी। हाँ, बात बात है। तो अल्लाह करे आप साबिकून अल अव्वलून में से हो, आप और आप ही में से किसी ने कहा है कि हमने जिस दिन इस कोर्स के लिए साइन किया था हमें नहीं पता था कि हम इतना अच्छा काम सीखेंगे और इतनी प्यारी किताब है ये, और बच्चियों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है सुबहान अल्लाह। वो कहती है कि आप बंद ही ना करें। कह एक बच्ची कल मेरे पास ब्रेक में आई, कल की क्लास थी शायद सैटरडे में, तो संडे में कहने लगी प्लीज प्लीज वक्त बढ़ा दें। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगी कि जब आप कहती है ना कि अच्छा आप क्लास का वक्त खत्म हो गया, तो उस वक्त एहसास होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे हमारे हाथ से किसी ने कोई चीज ले ली है। पूरा वीक कहती हफ्ते के 5 दिन मैं इन 2 दिनों का इंतजार करती हूँ। एक बच्ची कहने लगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कुरान ये है। यानी वो जैसे नई नई बारिश होती है तो खुशबू आती है ना, इस वक्त उनके दिलों पर ये कुरान की बारिशें हो रही हैं, उनका दिल खिल रहा है। फिर जिन्होंने ये बात कही मुझे सुनाई, यही बात जो भी सुना चुकी, तो मैंने उन्हें कहा कि दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह हालात साजगार रखे, एक ये कोर्स हो जाए जो अब शुरू हुआ है बच्चियों का। आप देखिएगा लोगों की लाइनें बाहर लगी होंगी और जगह नहीं होगी। एक दफ़ा अपनी रेपुटेशन बना लें, एक दफ़ा एक्सीलेंसी के दर्जे पे काम कर लें। मन तो मारना पड़ेगा। आप ही में से कुछ बच्चियां जो उस क्लास में भी हेल्प कर रही हैं और आप में से भी माशाल्लाह बहुत सारे साथी कर रहे हैं, कर लें। जिगर पे कहते ना कि हाथ रख के कर लें, फिर एक वक्त आएगा आपने राज करना है। लेकिन शुरू में ये मुश्किलात आती हैं मुसलमानों को। अगर अल्लाह ताला अबू जहल के लश्कर से ना सामना करवाता तो ओहद और उसके बाद अहजाब और फुला और बनु नज़ीर ये जंगे लड़ ही नहीं सकते थे, और इस वक्त नबी सामने था। आगे आप पढ़ेंगे कि ये जंगे सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों से नहीं होती। अभी पीछे दुआएं करने वाला नबी था, तड़प रहा था वो। ग़ज़वा बदर का जब मैदान खुला, लोग वहाँ मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अरीश में बैठे दुआएं कर रहे थे, जिसका तज़किरा आ गया है। ग़ज़वा बदर की कुछ झलकियाँ। इस तस्तगीसूना रब्बकुम, जब तुम फरियादें कर रहे थे अपने रब से, फस्तजाब लकुम, पस कबूल कर ली उसने, सुन ली तुम्हारी दुआएं। क्या कहा? अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ मिनल मलाइकति मुर्दफीन, बेशक मैं तुमको मदद देने वाला हूँ 1,000 फरिश्तों में से जो पै दर पे आने वाले हैं, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। मुर्दफीन रदीफा से है, ये वही है जो रादिफा रदीफ पीछे आने वाले को कहते हैं। तत्बाउहर रादिफा आखिरी पारों में आता है, जो घोड़े पे या ऊंट पे सवार के ड्राइवर के पीछे बैठा होता है उसको भी रदीफ कहते हैं। यहाँ पता चलता है कि फरिश्ते डिसऑर्गेनाइज होके नहीं आए थे, बहुत लाइनों में आए, मुरतब सूरतों में आए। तुम काफिर 1,000 हो तो अल्लाह ने 1,000 फरिश्ते ले आए, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। और तस्तगीसून गौस से है, गयास गैन यासा और गैन बौसा दोनों आता है, कि अल्लाह के नबी सल्लम फरियादें कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने देखा कि सारे काम करवा के सफ बंदियां कराईं, लोगों को उनकी जगह पे खड़ा किया, खुद अल्लाह के नबी मैदान जंग में गए, तुम यहाँ खड़े होना, तुम यहाँ खड़े होना, यानी आपने सफ बंदी कराई, एक तरफ दाईं तरफ मैमना और मईसरा सबको बांध के कर करा के असाइन किया, और उसके बाद खुद एक अरीश ऊंची जगह थी जहां से सारे मैदान को आप देख सकते थे, वहां चले गए। उस वक्त भी अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे। क्या शान थी अबू बकर की। और अबू बकर कहते हैं कि मैं देख रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रो रहे हैं, और आप इतनी गिरिया जारी कर रहे हैं कि आपके कंधे पे जो चादर पड़ी हुई थी ना, वो शिद्दत जज्बात की वजह से बार बार गिर रही थी। और मैं कह रहा था अल्लाह के नबी गम ना करें, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह के नबी गम क्यों ना करते। उनकी तो हालत वो थी कि जो कहे कि अल्लाह मैंने अपनी 15 साल की कमाई तेरे सामने ला के रख दी है, इस वक्त दुश्मनों की तलवारों में मेरे 15 साल के कीमती हीरे पड़े हुए हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान और बिलाल और हबाब और इस तरह के लोग जो तकलीफ़ें सह सह के ट्रेनिंग ले लेके तरबियत कर कर के जिनको इतना खड़ दिया था, आज वो दुश्मनों के हाथ में, और अगर ये आज चले गए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। और हकीकत में फिर ऐसे ही हुआ। अबू बकर सिद्दीक ही फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम इतनी शिद्दत से जब ये बात कर रहे थे तो उसके बाद एकदम आपका चेहरा जो था वो खिल गया, और आपकी ज़ुबान पे सूरत नजम की आयतें थीं कि सयुख समुल जम ओ, अन करीब ये जत्था शिकस्त पा जाएगा और अल्लाह की मदद आएगी। और आपने उसी वक्त अबू बकर को कहा कि अल्लाह की मदद आ गई। फस्त जा बलकुम, कहा जिब्राइल आ गए अपनी फौजें लेकर, और फरिश्तों के तरे लग गए। यहाँ 1,000, कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहा इससे क्या होता है, कितने आए, कहाँ आए। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, ये फरिश्तों का उतरना तो एक खुशखबरी थी बस, एक जाहरी सबब था, वरना कोई फरिश्तों से थोड़ी मदद होती है। वली तत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और ताकि इत्मीनान पकड़े इसके साथ तुम्हारे दिल। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को बांधना चाहता था कि लोग हैं, वरना लोग थोड़ी कुछ करते हैं। असल बात तो क्या है कि वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्ला, और नहीं है मदद मगर अल्लाह की तरफ से। असल मदद तो अल्लाह ही करता है, एक फरिश्ता हो, 1,000 हो, 5,000 हो, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। کٹھپتلی ہیں، انسان بھی کٹھپتلیاں. یہ زبان نہیں چل سکتی اگر اللہ نہ چلائے، یہ ہاتھ نہیں لکھ سکتے آپ کے اگر اللہ نہ لکھوائے، یہ کمرے نہیں جھک سکتی، یہ نہیں بیٹھ سکتے انسان اگر اللہ نہ بٹھائے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ ہے لِلَّهِیَت، یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ایسے معاملے کر دیتا ہے تو وہ پھر ناممکنات کو ممکن میں بدل دیتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ میدان جنگ کی پہلی جھلکی پیش کی گئی، آغاز میں کیا حال ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کے اوپر کیا گریہ زاری تھی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جما رہا تھا. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ حق کو ثابت کر دیا جائے. اور حق کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حق کے لیے قربانیاں دینا، جم جانا، یہ مشکل ہوتا ہے. حق والے تھوڑے بھی ہوتے ہیں نا، لیکن اگر ان کے کردار پختہ ہوں، ان کے عزم اور ان کے ارادے بلند ہوں، بہترین تربیت یافتہ ہوں اور مقصد پہ نظر رکھنے والے لوگ ہوں، تو فتح اسلام کو ہوتی ہے، فتح ہمیشہ حق ہوگی. صحابہ نے میدان جنگ میں آنے سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں مانگی، بتائیں فتح ہوگی کہ نہیں، کچھ مال ملے گا کہ نہیں، بس ایک کام تھا، مقصد پہ نظر. لیحق الحق ویبطل الباطل. اور اللہ کیسی پیاری جماعت تیار کروا لیتا ہے اپنے منصوبوں کو تکمیل دینے کے لیے، کہ وہ صحابہ کی طرح بے غرض، بے لوس، لینے والے نہیں دینے والے، اور اس طرح فوکس لوگ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ چل پڑتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے ہاں کیوں نہ ہوتا، صحابہ کو تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تکون لکم، تمہیں فتح ہوگی. لیکن بعد کے دور کو دیکھ لیں، اس کے بعد بھی تو کتنی جنگیں لڑی گئیں صحابہ کی طرف سے، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کے دور میں کسی جگہ نہیں پتا تھا فتح ہوگی یا شکست. اللہ کے نبی کے ساتھ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن ابو بکر صدیق کے دور میں جنگ یرموک ہوئی، جنگ موتا دیکھی اللہ کے نبی کے آخری دور میں ہوئی، کسی نے نہیں پوچھا بتائیں فتح ہوگی یا شکست، مقصد پہ نظر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے راستے میں کامیابی ہو جائے یا نہ ہو جائے؟ سچے کام کرنے والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کوشش کی، کام نہیں ہو سکا، مت غم کھائیں، آپ کی کوششیں لکھی گئیں. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ کوشش کریں. کئی ارادے، کئی پروگرام، کئی منصوبے کھٹارے میں پڑے رہتے ہیں، کئی فائلیں نیچے کی نیچے دبی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں. اللہ کا کام کیا ہے؟ کہ بس بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے. جب مقصد اللہ کا نام بلند کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر ذاتی فائدے پیارے نہیں ہوتے، پھر وہ لوگ ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتے، پھر وہ دنیاوی کامیابی اور اس کے گلیمر پہ نہیں آتے. ان کی نظر ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کے لیے چن لیا، اور اس کے لیے الحق کے ساتھ تعلق بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ایسے وقت میں آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت حباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پہ پہنچ کے، بدر کے مقام پہ پہنچ کے کہا کہ جہاں ہم پڑاؤ کر لیتے ہیں. اب یہاں ایک لطیف سا نقطہ آپ کو بتانے والی ہوں. جب آپ نے سوچا کہ یہاں ہم اب پڑاؤ ڈالتے ہیں اور یہ ہمارا مورچہ ہوگا، تو حباب بن عرت ایک صحابی تھے، جنگوں کے ماہر تھے، بڑی جرت کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا یہ اللہ نے آپ کو حکم دیے کہ یہاں پہ آپ بیٹھیں، یا آپ کا ارادہ ہے اپنا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے اس کے بارے میں کوئی انسٹرکشن نہیں دی، میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو پھر حباب نے کہا اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں. کہا کیا؟ کہا یہاں نہ رکیں بلکہ وہ آگے چلیں، جو قریش کے بالکل قریب والا کنواں ہے نا. آپ امیجن کریں نا، قریش وہاں کھڑے ہیں اور مسلمان یہاں تھے، اور بیچ میں دو تین کنویں تھے، اللہ کے نبی ادھر ہی کھڑے ہو رہے تھے ابھی. کہا یہاں نہ کھڑے ہوں، آگے چلیں، چلتے جائیں، آخری کنویں پہ پڑاؤ ڈالیں. کیوں؟ کہ جب وہاں ہمارا قبضہ ہوگا تو قریشیوں کو پانی نہیں ملے گا، سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے، اور اس پانی کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوگا. اب اللہ کے نبی کہتے چپ کر جاؤ، میں بڑا ہوں کہ تم، میں لیڈر ہوں، میں بڑا ہوں، میں استاد ہوں. نہیں، مان گئے. کہا ویری گڈ، بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور یہ تھی اللہ کے نبی کی پرسنالٹی، دل میں یقین بھی ہوتا تھا نا کیا کرنا ہے اور کیا ٹھیک ہے، پھر بھی دوسروں سے پوچھتے تھے بتاؤ کیا کریں. اور یہ ایک اچھے ماں باپ کی بھی علامت ہوتی ہے، اچھے لیڈرز کی بھی یہ پہچان ہوتی ہے، وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ہر سب کچھ آتا ہے، ہر فن مولا کا دعویٰ نہیں تھا. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ میرے لیے اچھا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی ہر بات کے ماہر نہیں تھے، आपका अपना ही कॉल है, आपने फरमाया कि दुनिया के मामलात में तुम मेरे से ज्यादा अच्छा कभी जानते हो। एक दफा आप एक जगह से गुजरे थे, एक शख्स पौधा लगा रहा था, जैसे पेवंद लगाना कहते हैं ना, तो वो दो पौधों को मिला के लगा रहा था। अल्लाह के नबी बातें करने लग गए, और इससे लगता है कि अल्लाह के नबी हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे। हम कहते हैं बस पढ़ने पढ़ाने की बात करो, और अगर खाना पकाने की बात कर ली तो आपका तो तकवा ही ख़त्म, और स्टिचिंग का नाम ले लिया फिर तो आप गैर मुत्तकी हो गए। ऐसा नहीं होता मुत्तकी जो सफ़ेद कपड़ों में बैठा हो। आप हर मामले में इंटरफेयर करते थे, कोई खा रहा होता तो उसके साथ खाते उसकी तारीफ करते, कोई अच्छा कपड़ा पहनता आप उसकी तारीफ करते। तो एक सहाबी जो थे वो कोई पौधा लगा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लम ने उसे पूछा ये कैसे किया है, उन्होंने कहा ये किया। तो आपने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर तुम इसका जोड़ इसके साथ नहीं उसका उसके साथ लगा दो कुछ और का। उनका ज़रूर ज़रूर श्योर श्योर वो कर दिया। जो अल्लाह के नबी का मशवरा मान के किया उसके बाद उसकी फसल ही नहीं आई। अगले साल जब मामला बना कहा अल्लाह के नबी फसल नहीं, कहा अल्लाह के बंदे तो मेरी ना मानते, मैंने तो ऐसे ही कहा था। तो क्या पता चलता है, वो इंसान थे, वो बशर थे, कभी कोई ऐसी भी बात है कोई भी हुई। और इससे ये भी पता चलता है कि बाज़ दफ़ा टीम में भी कोई बंदा जुज़वी तौर पे किसी काम में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो लीडर की कोई ये शान में कमी नहीं होती कि वो कह नहीं आता कि नहीं आता मैं ही करूँगा ये काम। बाज़ लोग जैसे चमचा अपने हाथ से नहीं जाने देते ना, चाहे हाथों में दर्द शुरू हो जाए चमचा पकड़ते हुए, चाबियाँ नहीं देती बाज़ सांसें, चाहे वो चाबियों का बोझ कमर झुका दे। दे दीजिए अपने हाथों से दिए, खुश हो, मुबारक हो आपको कि आपके आपसे बेहतर करने वाले आ गए। आपके बच्चे अगर आपसे अच्छा काम नहीं करेंगे ना तो आपकी नस्ल ही बेकार हो जाएगी, और आपके तालिब इल्म आपके सिखाए हुए लोग अगर आपसे अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपका काम ख़त्म हो गया। तो लिहाजा आपने माइंड नहीं किया बल्कि खुशी खुशी कहा कि तुम ये काम कर लो, और इस तरीके से फिर अल्लाह के नबी सल्लम के जरिए से ये मामला पूरा हुआ। अब यहाँ तक जो बात हुई है ना, ये गज़वा बदर के सेटअप की है, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे शुरू के दिन चल रहे हैं किसी कोर्स के। हैं अब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आने की ज़रूरत है। अब क्या हुआ, अब आखिर जंग जंग होती है भाई, खेल थोड़ी है, खाला जी का बाड़ा थोड़ी है। जैसे आप पहले दिन शौक से आते हैं, बैठते हैं, घर से निकलते हैं, सारे घर में शोर मचाया होता है, पढ़ने जा रही हूँ जा रही हूँ, और जब यहाँ आके बैठते हैं तो फिर आपको लगता है अरे तर्जुमा भी याद करना है, इसमें तो असाइनमेंट्स भी हैं और इधर तो बुक्स भी होंगी। दो दो तीन तीन जो बुक्स अभी तक थी इधर, तो वो कुछ स्टूडेंट्स को दी, तो रिसेप्शन वाली जो थी वो सुना रही थी, कह रही कि कुछ बच्चियां देख के वो कहती हैं हाय ये सारी हमें याद करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा उनको तो भी ये 10% भी नहीं मिला। नहीं, उन्होंने कहा फिक्र ना करो, सदरी हदीस हमें ज़ुबानी याद करनी पड़ेंगी किताबो तहारत की। वैसे बच्चों के साथ भी एक अजीब ही मज़ा आता है ना, लाव बालीपन होता है, हाँ, और जो दिल में होता है वो साफ कह भी देते हैं, हाँ। तो बहरहाल अब यहाँ पे बुनियादी चीज़ हुई। अब अगली आयतों में ज़रा सुनिए कि मैदान जंग में क्या हो रहा है। अब आप उसको अपने क्लासरूम में बैठने के साथ खुद ही टैली कर लेंगे।